अगली टिप लीजिए, सआदत की कुंजी। सआदत कहते हैं खुशबख्ती को, कुंजी कहते हैं चाबी को, कीज़ ऑफ दी हैप्पीनेस। आप झोंपड़े में रहकर अल्लाह की मार्फत हासिल कर लें, इसके शेदाई बने, इसकी बंदगी करें, तो सारी भलाई खैर और राहत और सुकून को पालेंगे। सच है, कभी अपने छोटे छोटे घरों में रहते हुए लोगों को देखा जिनके चेहरों पे एक इत्मीनान, खुशी, मोहब्बत हो? लेकिन अगर अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं, तो कितने ही शानदार महलों, वसी व फराख कोठियों में रह लें, कितने ही अरमान पूरे हो जाएं, इंजाम अच्छा न होगा। बदनसीबी मुकद्दर होगी क्योंकि सआदत की कुंजी से महरूम है। कारून के बारे में सूरत कसस में आता है, हमने इसको इतने खजाने दिए कि इसकी चाबियाँ बहुत बड़ी ताकतवर जमात पर भारी पड़ती थी। जिसकी चाबियाँ भारी थी उसके खजाने कितने होंगे। लेकिन क्या खुश था, क्या वो खुशकिस्मत था, सईद था? नहीं था। तो दुनिया की दौलत को इतना जमा कीजिए जितना कल हिसाब दे सके। तो आपके मेरे पास सआदत की चाबियाँ कितनी हैं, क्या हैं, आप और मैं अपने बारे में खुद सोच सकते हैं, अपने बारे में खुद पूछ सकते हैं। हम अल्लाह से ये भी कह सकते हैं कि मालिक, तू हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि हम इस दुनिया से इज्जत के साथ गुजर जाएं। ऐसा दे कि जिसका हिसाब ना हो, और ऐसा दे कि जिस पे कोई अजाब ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मैं इस दुनिया की क्यों तलब करूं, कि जो हलाल से मिले तो हिसाब का ज़रिया, और अगर हराम से मिले तो अजाब का ज़रिया। ना हमारे अंदर हिसाब देने की ताकत है, और अल्लाह के अजाबों को तो कौन सह सकता है। तो फिर जो है उस पर राज़ी रहिए, बहुत है हमारे पास। खूब से खूब तर की तलाश ने हमें बूढ़ा कर दिया, हमारी ज़िंदगी का सुकून और खुशी ख़त्म हो गई, और मुस्तकबिल को बनाते बनाते आज अपने इस हाल को हम बिगाड़ चुके। थोड़े पे भी राज़ी हैं तो आप उससे ज़्यादा खुशबख्त हैं कि जिसके पास ज़्यादा भी आ गया और वो फिर भी खुश नहीं, उसके पास अभी वो खुशी की कोई कैफियत ही नहीं दिखती। फिर इसी तरह से याद रखिएगा एक चीज़ कि कहीं ना कहीं कमी तो रहेगी। ये कभी नहीं हो सकता कि आपको सब कुछ मिल जाए और किसी को कुछ भी ना मिले। कभी ज़ाहरी नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं तो कभी बातनी चीज़ें भी होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो है उस पर राज़ी रहें, और अल्लाह के फ़ैसलों पर जो राज़ी होता है अल्लाह उसको फिर राज़ी कर भी देता है। सवाल पैदा होता है कि सआदत क्या है? तो सआदत खुश नसीबी है, खुशबख्ती है, फरमाबरदारी और इताअत है, वफादारी और खिदमत है, और बरकत का ज़रिया है, और दिल का सुकून। ज़रा सा अपने आप से पूछिए, क्या मैं सआदत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ? यानी गोया कि मैं फरमाबरदार हूँ, मती हूँ, वफादार हूँ, खिदमत करती हूँ, बरकत है मेरी ज़िंदगी में, दिल का सुकून है मेरे अंदर। और सआदतमंद इंसान कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सआदतमंद वो है जिसे फितनों से बचा लिया गया, और वो जिसे इब्तला आजमाइश में तो डाल दिया गया लेकिन इसने सब्र किया। अल्लाह हमें भी सईद बना दे। ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है 3700। तो खुश नसीबी क्या है कि फितनों से दूर रहिए, मुसीबत पर सब्र और इस्तकामत का दामन थामे रखिए, और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहिए। इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह के नबी की नज़र में सआदत मंदी के अनासर क्या हैं। एक हदीस में आपने चार चीज़ों का तذکرہ किया, जिसको नेक बीवी मिल गई, वसी घर मिल गया, नेक हमसाया मिल गया, और पुरसकून सवारी मिल गई। एक जगह तो आता है कि वो बादशाह है, मलिक है वो, तो फिर आप में से मेरे में से कौन बादशाह नहीं है? सआदत कैसे हासिल करें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चार चीज़ें हैं आपके सामने। पहली बात है कि अल्लाह की इताअत और उसकी बंदगी के ज़रिए, फिर इत्तबाए रसूल के ज़रिए, फिर शरीयत की पाबंदी के ज़रिए, फिर अफ़्वो दरगुज़र के ज़रिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मदीना के कब्रिस्तान यानी बकी गरकद में एक जनाजे में शरीक थे जिसमें अल्लाह के नबी भी थे। आप आए और बैठ गए, आपके पास एक छड़ी थी, आप उससे ज़मीन को रेतने लगे, फिर सर उठाया और फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम में से हर एक मुतनफ़िस यानी हर इंसान का ठिकाना जन्नत या दोज़ख़ में लिख दिया है। ज़रा सोचिए आप भी पहले अपने बारे में, मैं भी सोचूं, क्या मेरा एक घर जन्नत में, अल्हम्दुलिल्लाह, और एक घर दोज़ख़ में, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ये भी लिख दिया कि वो नेक बख्त होगा या बदबख्त। लोगों में से एक शख्स ने अर्ज़ की है, अल्लाह के नबी, फिर हम क्यों ना अपने लिखे पर एतमाद करके बैठ रहे हैं? मुराद ये था कि अमल छोड़ दें। کیونکہ جو نیک بختوں میں سے ہوگا وہ لازماً نیک بختی کی طرف جائے گا، اور جو بدبختوں میں ہوگا وہ ضرور بدبختی کی طرف جائے گا۔ یعنی بڑا لاجیکل سوال تھا ان کا، لیکن اللہ کے نبی کا جواب سنیے گا۔ فرمایا، عمل کرو، ہر ایک کے لیے اس کا عمل آسان ہے۔ اہل سعادت کے لیے سعادت کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور بدبختوں کے لیے بدبختی کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4694۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ ہر بندے کے لیے وہ چیز آسان کر دیتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ذرا سا ایک گیپ لیجئے، ذہنی وقفہ، خلاصہ کریں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ دفاع کرتا ہے اہل ایمان کا، یعنی دنیا آخرت کے شرور ان سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے وعدہ خیر اور بشارت ہے کہ ایمان کے سبب انہیں ہر طرح کے مکر و فریب اور برائیوں سے بچا لے گا۔ مثلاً کس چیز سے اللہ بچاتا ہے؟ کفار کے شر سے بچائے گا، شیطان کے وسوسوں سے، نفس کی شرارتوں سے، بدعمالیوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ جب مصیبتیں آئیں گی تو ان پر تنگی نہیں ہوگی، آسانی کرے گا، ان کے بوجھ دور کر دے گا، اور ہر صاحب ایمان کو اللہ کی یہ حفاظت اور فضیلت اپنے ایمان کے حساب سے حاصل ہے، بعض کو مستقل اور بعض کو اکثر حالات میں۔ اور ایمان کے ثمرات میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندہ تسلی حاصل کرتا ہے اور مصائب و شدائد کو آسان سمجھتا ہے۔ جو اہل ایمان ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، یعنی بندہ مومن پر مشقت آتی ہے اور وہ اسے اللہ کی جانب سے سمجھ کر برداشت کرتا ہے، اور یہ کہ وہ تقدیری بات ہے تو وہ ان تکلیفوں پر راضی برضا ہو جاتا ہے۔ مصائب انگیز کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، یعنی برداشت کرنا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں اور ان کا ثواب اللہ اسے دے گا۔ تو کیا سیکھا؟ کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، اللہ کی رحمتوں میں رہیں، تو پہلے تو خود کو مومن بنائیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ اتنی خوبصورت یہ خوشخبری ہے، سورۃ حج میں ہے یہ آیت، اور اللہ تعالیٰ اس میں بندے کو واقعی یقین دلاتے ہیں۔ اتنی اس کی خوبصورت تفسیر ہے، کبھی آپ نے پڑھی ہو، سنی ہو، تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی کرونا سے پریشان، کوئی لاک ڈاؤن سے پریشان، کوئی جنگ کے خطروں سے پریشان، کسی کو کوئی اور آفت کا خطرہ، ہولتے نہیں رہتے لوگ۔ چلے دوسرے تو ہولیں، مسلمان کیوں ہولیں؟ جس کا رب اس کے ساتھ ہے، جس کو مرنے کے صورت میں جنت کی خوشخبریاں ہیں، جس کو جینے کی صورت میں اللہ کا نمائندہ ہو کے جینے کا شرف ہے، وہ کیوں ہولے؟ ایمان نہیں ہے۔ اور جب ایمان ہوگا تو دنیا اور آخرت کے شر بھی دور ہوں گے، کفار کے شر، وسوسے، نفس کے شر، ہر بدعمالی سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اور اپنے دل سے پوچھئے، میرے ایمان کا لیول کیا ہے؟ دیکھیں، ہم اپنی بازو یعنی نفس دیکھ کر بغیر تھرمامیٹر کے بھی اکثر بتا دیتے ہیں کہ بخار ہے کہ نہیں ہے، باڈی ٹیمپریچر کتنا ہے۔ کیا آپ اور میں اپنے ایمان کا ٹیمپریچر جانتے؟ اور وہ ہے کہ آ کے مشکل وقت میں کھول کھام رہنا، ریلیکسڈ رہنا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہدایت دیتا ہے، مومن راضی برضا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں سچا ایمان دے دے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہولتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ ایمان کے سہارے کھڑے رہیں گے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگوں سے آگے ملتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک لیجئے گا، کیسے تھے وہ لوگ، کون لوگ جو گزر گئے۔ آئیے اولو العزم اور عظیم صحابہ کرام میں سے ایک کے زمانے میں چلتے ہیں، وہ ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور جگر کے ٹکڑے یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک دن صبح میں اٹھتے ہیں اور دونوں کھانے کی کوئی چیز تلاش کرتے ہیں جو نہیں ملتی۔ سردی شدید ہے، علی رضی اللہ عنہ ایک فر پہن کر نکلتے ہیں اور روزی تلاش کرتے ہیں۔ مدینہ کے اطراف میں ایک یہودی نے یاد آتا ہے جس کے پاس کھیت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ ان کے کھیت پر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عربی آ، اور ایک کھجور کے بدلے ایک ڈول پانی کنویں سے نکال۔ علی رضی اللہ عنہ خاصی دیر تک یہ کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ دونوں ہاتھ سوج جاتے ہیں، جسم چور چور ہو جاتا ہے۔ جتنے ڈول نکالے ان کے بقدر کھجوریں علی رضی اللہ عنہ کو ملتی ہیں۔ آپ انہیں لے کر پہلے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کچھ کھجوریں آپ کو پیش کر کے پھر گھر آتے ہیں، اور دونوں دن بھر انہی سے کام چلاتے ہیں۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ ज़रा सा लें अपने ऊपर, हम रोज़ा खोलें और सिर्फ खजूर नहीं बल्कि खजूरें खाएं। और कोई पूछे क्या हुआ क्या खाया, कुछ भी नहीं सिर्फ खजूर खाइए। और इतनी मेहनत करके आने के बाद सिर्फ खजूर मिले, हमारी तो चीखें निकल जाएं। ये थी इनकी ज़िंदगी। इसके बावजूद इनका एहसास ये था कि इनका घर खुशियों, सादत, नूर और सुरूर का गहवारा था, क्योंकि इनके दिल इन बुलंद इकदार और आला नस्बुलइन के लिए यकसू थे। और वो क्या था, ज़रा सा ख़ुद से पूछिए, क्या था इनकी ज़िंदगी का नस्बुलइन? और आज अगर आपकी मेरी ज़िंदगी का यही नस्बुलइन है, तो आपका दिल गवाही देगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत खुश नसीब हैं। जो अल्लाह के नबी का मिशन था वो इनका था। इनके दिल की अंगीठी गर्म थी, वो एक नुरानी और कुदसी माहौल में थे जिससे हक और बातिल को देखते थे, हक की सरबुलंदी के लिए कोशा और बातिल को मिटाने के लिए सर गर्म थे, वो अशिया की हकीकत से वाकिफ और राज़े हयात के रासना थे। एक एक जुमले को सोने के पानी से लिखें तो भी हक दाना हो। आज मैं और आप हक की सरबुलंदी के लिए कोशा हैं? हम तो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए दीन का काम भी करते हैं कि मैं कुछ सवाब ले लूँ, मैं कुछ पढ़ लूँ, मैं निखर जाऊँ, मेरी तजवीद अच्छी हो जाए, मेरी ग्रामर अच्छी हो जाए, मेरा तर्जमा पक्का हो जाए। अच्छी बात है, हक़ की सरबुलंदी तो नहीं है ये? आप ये सारा कुछ कर लें और नमाज आपकी बेरुख, और आप हक़ की सरबुलंदी के वक्त पे अपनी सरबुलंदी लगे हों, और आप अपनी ज़ात के खौल में खो जाएं, और अल्लाह का दीन, अल्लाह के काम के तकाजे वो खुद ही हो जाएंगे, तो बताइए क्या हकीकत में सच्ची खुशी मिलेगी? पूरे यकीन से कह सकती हूँ, आज भी सच्ची खुशी सिर्फ उनके हाथ में है जिनके हाथ में हक का झंडा है और उसको सर बुलंद रखने के लिए दिन रात कोशिश है। ऐसे हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं आज भी दुनिया में। मत सोचिए कि मैं ऐसी नहीं, तो कोई भी ऐसा नहीं, नापैद नहीं हो गए लोग, लेकिन आपकी खुशी नहीं रहेगी। खुशी मिलती है जब आपके ज़रिए से हक को सरबुलंदी मिलती है, वो अशिया की हकीकत से वाकिफ और राज़े हयात के रासदां थे। हम आज बेकार चीज़ों के पीछे मरते हैं। एक सेल का साइन हमें घंटों खड़ा करवाता है, जाके मिलना क्या है? एक की जगह दो ले आएंगे तो वो तो ख़त्म हो गया डिस्काउंट। एक की ज़रूरत थी एक लेते, सस्ता लगा दो ले लिए, पैसे तो उतने ही लग गए, उनको भी पता है। फिर इसीलिए बैग्स भर भर कर लोग लाते हैं। आज हम नेकियों को अगर इस तरह दो दो हाथ से लेने की कोशिश करें, देखिए दिल को कितना सुकून मिलेगा। और राज़े हयात क्या था कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में एक मकसद के साथ पैदा किया। कारून और हामान को क्या वो खुशी मिली, क्या वो मसरत मिली? एक ज़मीन में दसा दिया गया, दूसरे पे लानत हुई। इसकी मिसाल ऐसी बदली है जिससे किसान बड़े खुश हुए, इसके नतीजे में बेहतरीन पेड़ पौधे उगे, फिर वो जल गए, जर्द पड़ गए और रेजा रेजा हो गए। तो खुशबख्ती फिर इस दुनिया की कसरत में नहीं है। खुशबख्ती तो बिलाल, सुलेमान और अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के पास मिलेगी। बिलाल हक की अजान देते, सुलेमान ने सच्चाई के साथ मबाखात की, अम्मार ने वादा पूरा कर दिखाया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं कि जिनके बेहतरीन कामों को हम कबूल करते हैं और गलतियों से दरगुजर करते हैं, ये जन्नत वाले हैं। इनके लिए वो वादा सच्चा हुआ जो दुनिया में इनसे किया गया था। ए अल्लाह हमारे बारे में भी ये आयत कर दे। तो कैसे थे वो लोग, ऐसे थे वो लोग। लिखिए अजीम लोगों के अजीम मकासद। देखिए जीने के बहुत सारे रंग हैं ना, बास तो सिर्फ अपने दो बच्चों को पालने के लिए जीते हैं, और बास सिर्फ पेट पूजा के लिए जीते हैं, और बास सिर्फ घर बड़ा करने के लिए जीते हैं। ये भी अच्छे काम है, कोई एक काम भी इनमें से बुरा नहीं है, लेकिन पांच चीज़ें नोट कीजिएगा। अगर आप अजीम लोगों में शुमार होना चाहते हैं तो आपके मकासद बहुत अजीम हो। जीने का सबसे बड़ा मकसद, यानी जिसको आप कहें कि सबसे बड़ा राज हयात, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी। वो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये जो हम कुरान पढ़ते हैं, ये जो हम दीन सीखते हैं, ये जो हम नमाज करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये सब इसीलिए कि इन सब के बाद हम दीन का झंडा पकड़ने के काबिल हो जाएं। इसी तरह अजीम लोगों की ज़िंदगी का दूसरा बड़ा मकसद, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी। मैं अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करूंगी। फिर खलके खुदा की खिदमत, दुनिया में अच्छाई के लिए मेहनत, और इंसानियत की भलाई की कोशिश है। और हज़रत अली का जो वाक़या हमने पढ़ा, दिल हिला कि नहीं हिला? कैसे सुबह सवेरे उठकर रोज़ी की तलाश में निकलते हैं, और एक खजूर, एक डोल निकालने के लिए। आपने, मैंने तो कभी निकाला नहीं ना, शायद देखा भी नहीं होगा। कुएं के अंदर नीचे एक मोटी रस्सी के साथ डोल को लटका कर पहले वो नीचे भरता है, फिर उसको उठाना। यानी एक डोल आप 5 मिनट भी उठा के खड़े हों तो कितना भारी लगे। नीचे से ऊपर आना, एक पुल के साथ उसको लाना, फिर निकाल के पानी भरना, फिर दूसरा, और बदले में एक खजूर। फिर भी ज़िंदगी इतनी खुश, इतना प्यारा जोड़ा। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का जोड़ कितना प्यारा था। वजह क्या थी, कभी आप बैठकर सोचा करें। ख़ास तौर पे जब दिल किसी ख्वाहिश में टूटा हो, हाय वो नहीं मिल सका, हाय वो चला गया, वो टूट गया, तो बड़े मकासद के लिए जीने वाले छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझते। एक जुमला लिख लीजिए, अक्सर ट्रेनिंग सेशंस में बोलती हूँ कि बड़ी मंजिलों के राही छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। बहुत सारे लोगों से आप ये जुमला सुनेंगे, लेकिन अमली ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह जीना चाहते हैं। तो हक़ की सरबुलंदी के लिए कोशां हो जाएं, बातिल को मिटाने के लिए सरगर्दां हो जाएं, आपको राज मिल जाएंगे कायनात के। फिर आप देखिए कि कारून एक सिंबल है दौलत का, खजानों समेत ज़मीन में धसा दिया गया। हामान का जिक्र कुरान में उसके ओहदों की वजह से, लेकिन अल्लाह की रहमतों से दूरी। फिरौन तो एक तकब्बुर की अलामत था, अल्लाह ने समंदर में डुबो दिया उसको लश्करों के साथ। तो ये होता है पस्त किरदार लोगों का अंजाम। और जो पस्त लोग होते हैं ना, उनके मकासद बड़े पस्त हैं। सबसे बड़ा तो उनका मकसद ये होता है कि दुनिया की तईशात के लिए कोशिशें करते हैं। हर वक्त हल में मजीद, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मादी खुशियों के हसूल में लगे रहते हैं। दौलत के दीवाने होते हैं और तागूत की पैरवी करते हैं। फिर आप देखिए कि अजीम सहाबे कराम, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, सारी ज़िंदगी हक़ के लिए जिद्दोजहद की तो मौज़िन रसूल बन गए। कितने खुश वक्त थे कि उनकी अजान पे अल्लाह की नबी नमाज़ पढ़ते और पढ़ाते थे। काबे की छत पे खड़े होने का एजाज़ तो बिलाल को मिला ना। सलमान फ़ारसी को देखिए, सच्चाई के साथ मवाखात कायम की, भाई भाई बने। हकीम थे, दानिशमंद थे, गज़वा खंदक के वक्त उनकी फहमो फरासत से दुश्मन का अच्छी तरह मुकाबला किया गया। और अम्मार बिन यासिर को देखिए, बड़े मशहूर सहाबी थे, इनके वालदैन इस्लाम के पहले शुहदा थे। कौन थे पता? बीबी सुमैया और यासिर। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने इस घराने को कहा था, सब्रन अला आली यासिर इन्नी मौइदुकुमुल जन्ना। ऐ यासिर के घर वालों, सब्र करो, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरियाँ देता हूँ। सबसे पहली खातून शहीदा इनकी माँ थी। अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तमाम गज़वात में शिरकत की। और सूरत अनकबूत 58 में अल्लाह ताला कहते हैं, वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए, इन्हें हम यकीनन जन्नत के इन बाला खानों में जगह देंगे, जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। और काम करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला किसी का हक नहीं रखते। आप मैं नहीं रखने की कोशिश करते कि किसी का हक कम पर हो, तो अल्लाह तो फिर अल्लाह है। ज़रूरत है इस बात की कि अपनी फ़िक्र की जाए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हम अपने ऊपर लेकर सोचें, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मुझसे क्या खैर मिल रही है दुनिया को, मेरा रुख क्या है। अगर आज मैं दुनिया से चली जाऊं, क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों को, कितना पड़ेगा, कैसे, हर एक सोचे अपने ऊपर, तो इंशाल्लाह रास्ते खुलेंगे। तो आपको मुझे अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद देना। अगला टॉपिक लीजिए, सब्र के सिलसिले में हुक्मा के अकवाल। नुशेरवान से मनकूल है कि इसने कहा, तमाम दुनियावी मुसीबतें दो किस्म की हैं, एक में तदबीर काम देती है जबकि बेचैनी की दवा है, दूसरी में कोई तदबीर नहीं, सिर्फ सब्र काम आता है। एक हकीम कहता था कि जिन चीज़ों का कोई इलाज नहीं, वहाँ सब्र काम देता है। कहा जाता है कि जो सब्र के पीछे चलेगा, मदद इसके पीछे चलेगी। मारूफ मिसालों में यह है कि सब्र कुशादगी की कुंजी है। जो सब्र करता है वो कुदरत पाता है, और सब्र का समर कामयाबी है। इसको हाईलाइट कर लें, सब्र का समर कामयाबी है। जब आजमाइश सख्त होती है, मौत तलब करो, ज़िंदगी मिल जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि मौत की तलब में बका का सामान मौजूद होता है और बका की तलब मौत का सबब बन जाती है। अक्सर अमन वहाँ होता है जहाँ से खौफ महसूस होता है। अरब कहा करते हैं, शर में खैर होता है। असमाई इसका मतलब ये बयान करते हैं कि बाज़ शर बाज़ से हल्का होता है। अबू बैदा कहते हैं कि जब कोई मुसीबत आती है तो समझ लो कि इससे बड़ी मुसीबत भी हो सकती थी। ये सोचकर इसे हल्का समझो। एक हकीम ने कहा कि चीज़ों के अवाकिफ़ यानी उनके पीछे, जैसे बिहाइंड द कर्टन या बिहाइंड द सीन आप कहते हैं, चीज़ों के अवाकिफ़ या उनके अंजाम गैब में छुपे हैं। कितनी ही अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ों में मिलती हैं और कितनी मरगूबात में से मकरूहात मिलती हैं। कितने लोगों की नेमत पर रश्क होता है हालांकि यही उनकी कमज़ोरी है। कितने बीमारों पर रहम खाते हैं जबकि बीमारी में इनकी शिफा है। कहा जाता है कि बहुत से खैर शर से मिलते हैं और बहुत से शर खैर से बरामद होते हैं। फारसी में कहते हैं कि खुदा शरे बर अंगेस्त के खैर मादर आ बाशत। और इसी तरह एक शायर अल सहमी अपने कलाम में कहता है, शर पेश आए तो सब्र करो कि अक्सर शर से खैर निकलता है और झाग के नीचे से ही साफ सुथरा दूध मिलता है। जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तभी अल्लाह कामयाबी दे देता है, क्योंकि कुरान पाक में यहाँ तक के रसूल भी मायूस हो गए और ख्याल करने लगे कि इनसे किया हुआ वादा वफा नहीं हुआ, तो अल्लाह की मदद आ पहुँची। बिलाशुबा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साबिरीन को इनका अजर पूरा पूरा बग़ैर हिसाब के दिया जाएगा। एक मुसन्निफ़ ने इस बारे में लिखा कि जिसे अल्लाह नापसंदीदा समझे जाने वाले रास्ते से पसंदीदा चीज़ ले आता है, जैसे अल्लाह नापसंदीदा समझे जाने वाले रास्ते से पसंदीदा चीज़ ले आता है, वो उम्मीद ख़त्म होने और रास्ते बंद हो जाने के करीब कुशादगी पैदा कर देता है, ताकि लोग उम्मीदें उसी से बांधें और सिर्फ इसी पर तवक्कुल करें। किसी भी हाल में इससे उम्मीद ख़त्म न करें और किसी भी सूरत में इसकी तरफ से आने वाली कुशादगी से ना उम्मीद ना हो। इसी तरह वो इनकी मुश्किल से खुशी का सामान कर देता है कि बड़ी मुसीबत टाल कर छोटी मुसीबत में डालता है। आजकल आप परेशान हैं, हाँ इतनी बड़ी मुश्किल, ज़रा सोचिए अगर इससे बड़ी आती। ये तो आँखों से ना नज़र आने वाला एक वायरस है ना, और कितने बचाव के सामान, कितनी हिफाजत, और लॉकडाउन है तो घरों का है ना। ज़रा सोचिए, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अगर वर्स्ट मामला हो, कैंसर जैसा मर्ज फैल जाए, एड्स जैसी बीमारियां आ जाएं, लाइलाज हो, मास्क पहनने से भी ना बचें तो क्या करेंगे, और घर में भी नहीं बाथरूमों में बंद होना पड़े महीनों तो क्या करेंगे। क्या सोच के भी दम घुटा जी? तो फिर सब्र कीजिए, अल्लाह ने आपको मुझे जिस मुश्किल में अगर डाला हो तो उससे बड़ी भी तो आ सकती थी। थोड़ी मुश्किल से इनको गुजार कर ज़्यादा बड़ी दुश्वारी से बचा लिया। शायर कहता है कि आपका अताप नतीजे के लिहाज से अच्छा ही है कि जिस्मों को बसा औकात बीमारी से भी सेहत मिल जाती है, यानी कभी कभी का ये गुस्सा एताप पकड़ अच्छी होती है। इसहाकुल आबिद कहते हैं कि बसा औकात अल्लाह बंदे को किसी मुश्किल में डालता है और इसके ज़रिए से हलाकत से बचा लेता है। इस तरह वो आजमाइश एक नेमत हो जाती है। कहा जाता है कि जो आजमाइश बर्दाश्त करे, इस पर राजी व रज़ा हो, शिद्दत में सब्र करे, तो इस मुश्किल के फ़ायदे और मसलहतें अल्लाह ताला इसे दिखा देता है। बस नसरानियों से मरवी है कि किसी नबी ने फरमाया, आजमाइश अल्लाह की तरफ से तादीब होती हैं। तादीब क्या है? अदब सिखाने के लिए। एक तहज़ीब होती है, एक तादीब, और तादीब हमेशा नहीं होती। लिहाजा जो तादीब पर सब्र करे और मुश्किल में साबित कदम रहे, इसके लिए खुशखबरी है कि इसे गलबा मिलेगा, कामयाबी का ताज इसके सर पर होगा, जिसका अल्लाह ने अपने महबूब बंदों और अहले ताज से वादा किया है। इसहाक ने कहा कि जब आजमाइश की तेज़ धार और फितनों की नोक तुम्हें चुभे तो सब्र करो, क्योंकि निजात तक पहुँचाने वाला रास्ता मुश्किल रास्ता है। इसी तरह किसी ने कहा कि सब्र के ज़रिए कुशादगी का इंतज़ार बहुत खुश अंजाम होता है। तो फिर क्या सीखा? सब्र, सब्र और महज सब्र। इसके बगैर गुजारा नहीं है। आपकी मेरी औकात ही इतनी है, क्या करें फिर? और हमने हुक्मा के अकवाल देखे, नौशेरवां का कौल याद कर लीजिए, कैसे दुनियावी मुसीबतें कुछ तदबीर के लिए होती हैं, कुछ में तदबीरें भी काम नहीं करती, सिर्फ सब्र ही काम आता है। और जो सब्र के पीछे जाएगा, मदद उसके पीछे आएगी, क्योंकि अन्नसरु मा सब्र, और सब्र कुशादगी की कुंजी है। सब्र का समर कामयाबी है। अक्सर अमन वहाँ होता है जहाँ से खौफ महसूस होता है। यानी आप सोच कुछ और रहे होते हैं, हो कुछ और जाता है, अनएक्सपेक्टेड किस्म की मदद आती है अल्लाह की, फिर शर में खैर होती है। और अबू उबैदा ने जो बात कही कि जब कोई मुसीबत आती है तो समझ लो कि इससे भी बड़ी मुसीबत आ सकती थी, ये सोच कर इसको हल्का जानो। फिर आप देखिए कि हमने कुछ मज़ीद अक़वाल देखे, मसलन चीज़ों के वाकिब गैब में छुपे हैं, अच्छी चीज़ों में बुरी और मरगूबात में मकरूहात मिलती है। यानी आपको नहीं पता जो चीज़ ऊपर से अच्छी लग रही है वो अंदर से भी अच्छी हो। और इसी तरह से विदाया और सहमी कहते हैं, शर पेश आए तो सब्र करो, अक्सर शर खैर से निकलता है और झाग के नीचे ही सफ़ेद दूध मिलता है। और इसहाक़ुल आबिद ने क्या कहा कि जब आजमाइश की तेज़ धार और फितनों की नोक तुम्हें चुभे, कभी चुभी आपको, अगर चुभे तो सब्र कीजिए, क्योंकि निजात तक पहुंचने वाला रास्ता मुश्किल होता है। सब्र के बारे में क्या अल्लाह ताला ने भी कुछ फरमाया कुरान में? बहुत कुछ कहा। अल-बकरा 153, या अय्युहल्लज़ीना मनुस्ताईन बिस्सब्र वस्सला, ए ईमान वालों सब्र और नमाज के साथ मदद चाहो, क्योंकि इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। और इसी तरह आले इमरान की आखिरी आयत 200, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों इसबिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे के थामे रहो और जिहाद के लिए तैयार रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम मुराद को पहुँचो। इसी तरह नहल 127, वसबिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्ला, आप सब्र कीजिए, बग़ैर तौफीक इलाही के आप सब्र कर ही नहीं सकते और इनके हाल पर रंजीदा ना हो। और सूरत शूरा 43, और बिलाशुबा जो शख्स सब्र करे और माफ़ कर दे तो बेशक ये यकीनन हिम्मत के कामों में से। क्या सब्र के बारे में अहादीस में भी कुछ कहा गया? बिल्कुल, 3 अहादीस आपके सामने। सही मुस्लिम 2139, सब्र वही है जो सदमे के आगाज़ पे हो, इन्नमस सब्र इंद सदमतिल उला, चोट पड़े फिर ही तो सब्र है, बाद में तो सब्र आ ही जाता है, यानी सब्र सब्र के साथ आता है। फिर इसी तरह सही मुस्लिम 2424, जो सब्र की आदत डाले अल्लाह इस पर सब्र आसान कर देता है, और कोई अता इलाही बेहतर और कुशादगी वाली सब्र से ज़्यादा नहीं। और सही बुखारी 6424, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे इस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र करे तो इसका बदला मेरे हाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। अल्लाह ना तो डाले, और अगर कोई डाले तो पहले सब्र का फाहा दिल पे रख दे और हमें कभी किसी के सामने बेसब्रा ना करवाए।